प्रातः क्लास चल रहा था 30/3/1967 आठवें पेज की आज में बात चल रही थी। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, उसकी अच्छी महिमा क्या है, वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सदगुरु भी है, एक ही है। तो चलो जरूर ये बाप, टीचर, सदगुरु, ये तीनों ही, ये सर्विस इसको करनी पड़ेगी। किसको? इसको कहते थे तो किस तरफ इशारा करते थे? इसको, ये है ब्रह्मा बाबा की ओर इशारा करते थे, क्योंकि उनके बाजू में ही बैठा हुआ है शिव सुप्रीम सोल। तो इसको, ब्रह्मा को अभी ये सर्विस करनी पड़ेगी भविष्य में। मैंने 67 में नहीं कर रहा है ये सर्विस, बाप, टीचर, सदगुरु को समझाने की सर्विस 67 में नहीं कर रहा था है, कर रहा था। नहीं कर रहा था तब तो बताया कि भविष्य में ये सर्विस करनी पड़ेगी। कब? जब खुद इस गहरे पॉइंट को समझे। क्या? कि वो बाप भी है, सदगुरु भी है और सुप्रीम टीचर भी है। बाप बना है तो बाप ही कहेंगे, बाप कैसे बनता है, है? आदि में बीज बोता है तो बाप बनता है। अंत में वर्षा देता है तो बाप बनता है। बाप माना ही वर्षा। तो बाप बना है, बना है मैंने पहले नहीं था, पहले था या नहीं था, भले होगा, कोई जानता तो नहीं था। तो बाप बना है, वर्तमान की बात बताई, संगम युग में बाप बना है तो बाप ही कहेंगे ना। कैसे बना? पास्ट में बना, या भविष्य की बात बताई? बना है, पास्ट की बात बताई, 36-37 की बात बताई, जो गीता में भी लिखा है, अहम बीज प्रदपिता, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज बोने वाला पिता हूँ। तो बीज बोने वाला पिता बना है तो बाप ही रहेंगे, ऐसे थोड़े ही कि अंतिम पार्ट में बदल जाएंगे। शिक्षा देंगे बच्चों को, शिक्षा भी देते हैं टीचर बन करके। और ये भी गारंटी है कि अभी साथ में भी जाना पड़ेगा। अभी मानी कभी संगम में, संगम युग में अभी साथ भी जाना पड़ेगा। पड़ेगा माने कंपल्शन है कि सभी को साथ जाना है। है कहाँ जाना पड़ेगा? है अरे जहां से आते हैं वहीं जाना पड़ेगा, उसे कहते ही हैं परम ब्रह्म, ब्रह्मलोक। जिसके लिए बाप ही कह सकता है, सुप्रीम सोल बाप, जो सब का बाप है उसका कोई बाप नहीं। कि मध्योनी महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्, मेरी योनि रूपा माता महत ब्रह्म है, महत तत्व जिसे कहा जाता है। पंच तत्व जैसा नहीं है, महान तत्व है, तुरीय तत्व है। कौन है तुरीय तत्व? महत तत्व है। परम ब्रह्म जिसमें मैं ज्ञान का बीज आरोपण करता हूं। कोई भी बाप, बीज रूप बाप, किसमें ज्ञान है, किसमें बीज आरोपण करता है? माता में करता है, वो सामान्य बाप है। और ये तो परम पिता है। सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। तो माता भी साधारण माता होगी क्या? महत ब्रह्म गीता में भी आया, जिसे परम ब्रह्म भी कहें। वो हमारा घर है। कोई भी बच्चे इस दुनिया में आते हैं, हद की दुनिया में भी हद के बच्चे आते हैं, तो कहां से आते हैं? है मां से आते हैं ना, कहां से आते हैं? माता से आते हैं। तो ये परंपरा किसने डाली? कब से ये परंपरा चली है कि बेहद मनुष्य सृष्टि के बच्चे कहां से आते हैं? परम ब्रह्म से आते हैं। ब्रह्म कोई एक का नाम तो नहीं है, वो तो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। परंतु वो तो टेम्परेरी नाम है, टेम्परेरी रथ है, मेरा मुकर्रर रथ उसी को कहा जाता है महत ब्रह्म, परम ब्रह्म। मैं किस में आता हूं है? रथ में आता हूं या आत्मा में आता हूं? रथ में आता हूं। तो जो रथ है उसे सन्यासी लोग तो कहते हैं, भगवान है, हद की दुनिया के सन्यासी ही कहते हैं कि शूटिंग पीरियड में बेहद की दुनिया के भी सन्यासी कहते हैं किसे? ब्रह्म को क्या कहते हैं? भगवान है। लेकिन ब्रह्म रहने का स्थान है या भगवान है? रहने का स्थान है। तो वहां अभी साथ में जाना पड़ेगा, वो गुरु सच्चा गुरु भी है। नहीं तो दुनिया में तो अनेक गुरु होते हैं लेकिन गायन है सच्चा सदगुरु शिव भगवान, जिसे कहते हैं ऊंचा ता ऊंचा भगवंत। ये ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा कहां की बात है? इस साकार सृष्टि की बात है। तो महिमा भी कहां होती है? साकार सृष्टि में कितनी महिमा है। अगर बच्चे महिमा भी गाते रहें तो भी अहो सौभाग्य। बुद्धि में गाते हैं, कोई मुख से गाने की बात नहीं है। हाँ, ये मुख खोलना पड़ता है। क्यों है? सेवा करनी है तो मुख खोलना पड़ता है, जबकि दूसरों को समझाना पड़ता है। सिर्फ बैठ जाने से तो कोई नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। तुम यहां आए हो तो आकर के बन गए ना, आकर के बने हो ना, कहां? दुनिया में भी बच्चा आता है तो कहां आता है? अरे पहले पहले कहां आता है? है? अरे माता में आता है, फिर संसार में भी आता है, बाप के घर में आता है, माता पिता के घर में आता है, तभी तो बच्चा बनता है। बनता है या नहीं? बनता है। और तुम यादगार मंदिर शिवालय में जाकर गाते भी हो। क्या गाते हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वम संस्कृत में एक को कहा जाता है, माने तू एक ही है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व एक ही है। वो मेरी माता भी है, पिता भी है, एक ही कैसे? माता तो फीमेल होती है, पिता मेल होता है। तो शिवालय में जब जाते हैं तो शिवलिंग के सामने जाकर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो दोनों कैसे है? उसका सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में था। जिस मंदिर में आत्मा की यादगार हीरा भी था, ज्योति बिंदु निराकार की यादगार। आत्मा निराकार होती है ना, और वो हीरे का आधार क्या था? कहां रखा हुआ था? है? बड़े रूप में रखा हुआ था। बिंदु हीरा, जिसके लिए गीता में भी लिखा है अणोणियां सम्मनुस्मरित्य है, वो अणु से भी अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है। और उसका आधार है साकार शरीर, जो वेदवाणी मुरली में भी बोला, छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो तो बड़े रूप को ही याद करो। मना साकार में निराकार को याद करना है, क्योंकि हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग की है? प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है। तो तुम यहां आए हो, कहां आए हो? मात पिता के घर में। तो आकर के बन गए। बच्चा पैदा होता है तो मां बाप के घर में जाता है या नहीं जाता है? तभी मां बाप का बच्चा कहा जाता है। तो तुम आए हो तो आकर के बन गए, तो फिर इनमें इतनी पावर है। किन में है? इनमें माने माता पिता। इतनी पावर है जो तुम बच्चों को अपने में समय लेते हैं, ताकत है ना? कितनी ताकत? जो सब बच्चों में से बुद्धि योग हटाई करके बोलता है। क्या बोलता है? हमारा तो सभी तुम ही हो। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। है? कौन बोलता है शिव बाबा? कौन बोलता है? मेरा तो एक दूसरा न कोई, कौन कहता है मन मना भव? है क्योंकि जिसको मन होगा वो ही कहेगा। मनुष्य की ही बात है, मननात मनुष्य, मन को एक्ट में लाने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला, सोच विचार करने वाला मन वाला है ना, तो वही कहता है कब? जब मन को क्या कर लेता है? पूरा कंट्रोल कर लेता है, तब कहता है। नहीं तो मनन चिंतन मंथन करने वाले, सोच विचार करने वाले को, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान सोच विचार करता है, संकल्प विकल्प करता है? नहीं करता। तो बताया कि न मात पिता कहे जाने वाले में इतनी पावर है। कितनी पावर है? कि तुम बच्चों को अपने में समाय लेते। परम ब्रह्म है ना, सबसे बुद्धि योग हटाए करके एक में लगाई देते। मम्मा भी एक, बाबा भी एक, सो सभी तुम ही हो। बाकी तो दुनिया में उन सब से दुख मिलता है। आज अनुभव करते हैं सुख मिलता है, लेकिन फिर कल क्या अनुभव करते हैं? दुख मिलता है। उन सब से माने किन से? किन सब से दुख मिलता है? 500-700 करोड़ से दुख ही मिलता है। तुम एक से सुख मिलता है। ये तुम किसको बोला और किसने बोला, किसे के लिए बोला? है तुम एक से सुख मिलता है। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। तुम किसको कहा जाता है? है सन्मुख बैठने वाले को तुम कहा जाता है, जो बोला है ब्रह्म वाक्य। मैं तुमको सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेता है। तो तुम एक हो, लेकिन गायन ऐसे करते हैं यादगार शिवालय में जाकर, क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देव देव महादेव, महादेव है उस समय, जिस समय वो परम ब्रह्म का पार्ट बजाता है, वो महादेव है, है? देव है, देव नहीं। बोला तुम एक से सुख मिलता है, कौन एक? एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही सदगुरु। कहते भी हैं सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल का मतलब बिचौलिया है ना, तो बिचौलिए के आगे पीछे कोई है ना, है? किससे सौदा कराता है? वो दलाल सदगुरु के रूप में किससे सौदा कराता है? जो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया दिखाए। तो ऐसे कहते हैं, ये महिमा है, तुम एक की महिमा है, तो बरोबर आते हैं। क्या मम्मी भी कहते हैं ना, प्रवेश है, भी क्यों लगा दिया? मम्मी भी कहते हैं, भी क्यों लगा दिया? क्योंकि वो एक माता भी है, साकार माता और पिता बीज रूप निराकार। तो मम्मी भी कहते हैं ना, प्रवेश है, तब ही तो इनको माता पिता कहते हैं ना। कौन प्रवेश है? है आत्माओं का बाप शिव प्रवेश है, तब ही माता पिता कहते हैं। और बच्चा भी तो कहते हैं ना, किसको? शिव बालक को क्या कहते हैं? है शिव बालक बच्चा है, बच्चा भी बनता है या नहीं बनता है? जब सभी संबंध हैं तो बच्चा भी बनता है। कौन सी आत्मा की बात है? शिव ज्योति बिंदु, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसका आत्मा रूपी बच्चों के साथ सिर्फ एक संबंध है। क्या? बाप और बच्चे, बच्चियां भी नहीं, बाकी फिर अनेक संबंध किससे? किस आत्मा की बात है? है इस साकार में निराकार प्रवेश होकर कहते हैं, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। कैसा बनाकर जाऊंगा? आप समान बनाकर जाऊंगा। आप समान का क्या मतलब? आत्मा अभिमानी या देह अभिमानी? जैसे मैं सदा काल आत्मा अभिमानी हूं, आत्मा ही हूं, ऐसे ही तुम बच्चों को भी इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर सदा के लिए क्या बना कर जाऊंगा, आत्माभिमानी बना कर जाऊंगा। सभी बच्चों को सदा के लिए आत्माभिमानी बना कर जाता है। फिर सदाशिव किसके लिए है कहा जाता, कहते हैं ना सदाशिव। सदा का माने तीनों काल में शिव। कौन कौन से तीन काल? भूत, भविष्य और वर्तमान काल। आत्माओं का बाप तीनों काल में इस मनुष्य सृष्टि पर रहता है, तो उसके लिए ये कहा जाएगा कि तीनों काल में सदा काल प्रस्तुत रहता है, सदा शिव है, क्योंकि एक ही आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में इस षष्ठी पर सदा विराजमान रहती है, जिसकी शास्त्रों में यादगार भी है। कौन है यादगार? है भक्त तो न जानने के कारण पुरुषार्थी रूप का नाम ले देते हैं, शंकर। लेकिन जो पुरुषार्थी है उसे संपन्न कहेंगे नहीं? पुरुषार्थ करते करते जब संपन्न स्टेज को पहुंचता है, तो जो शिव का विरुद्ध है, आप समान बना कर जाता हूं, तो शिव समान बन जाता है। जैसे शिव का अर्थ है कल्याणकारी, वैसे सारी सृष्टि का, प्राणी मात्र का कल्याणकारी ऐसी स्टेज धारण करता है। तो बताया, तो उसको कहा जाता है बच्चा भी है, माता भी है, पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे भाई भी बनता है। शिव बाप ऐसे कहेंगे है? शिव बाप ऐसे नहीं कह सकते कि वो हमारा भाई भी है। अगर ये कहें, मान लो कहें, तो क्या प्रश्न पैदा होता है? अरे प्रश्न पैदा होता है कि भाई भी है शिव का, तो फिर बाप कौन है? फिर कोई बाप होना चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। वो तो बापों का बाप है, सुप्रीम फादर कहा जाता है, तो भाई नहीं बनता है। नहीं, वो फिर इनके लिए कहेंगे, किनके लिए है? ब्रह्मा के लिए कहेंगे, आत्मा आत्मा भाई भाई। परंतु हमको तो उठाना तो है ना शिव बाबा के लिए, किसके लिए? हमको आत्मा आत्मा भाई भाई कहें, ये बात खास किसके लिए उठाना है? अरे उठाना है शिव बाबा के लिए, शिव बाप के लिए नहीं। क्या अंतर है शिव बाबा और शिव बाप में? है वो है सिर्फ है? वो है आत्माओं का बाप, और जिसमें प्रवेश करता है वो ग्रैंडफादर भी बनता है। सभी संबंध हैं तो उन संबंधों में ग्रैंडफादर का भी तो संबंध होता है, नहीं होता? जो भी धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके बाप हैं धर्म पिताएं, है ना? और धर्म पिताओं का बाप कोई है या नहीं है? क्योंकि कोई भी धर्म पिताओं ने एक शंकराचार्य को छोड़कर, संन्यास धर्म को छोड़कर किसी ने नहीं ये कहा शिवो हम। सभी धर्म पिताएं अपन को सुप्रीम गॉड फादर नहीं मानते। तो वो क्या बनते हैं? उनमें भी बुद्धि चाहिए समझने की कि क्या बनते हो और तुम क्या कह सकते हैं। हम बाई बाई तो कह नहीं सकते हैं, कहेंगे हैं? हम किसके लिए बोला? हम माने एक या दो? तो कौन कौन दो? कम से कम दो। अरे शिव बाप और शिव बाबा दोनों के लिए बात हो रही ना, तो भाई भाई तो नहीं कह सकते कि ये दोनों भाई भाई हैं। कहेंगे बाबा बाबा कहेंगे ना। क्या क्या कहेंगे? बाबा बाबा माने ग्रैंडफादर। फिर भाई भी कैसे कहेंगे? बाबा को कोई भाई थोड़े ही कहते हैं। बाबा से ग्रैंडफादर से वर्षा मिलता है ना, कि भाई से वर्षा मिलता है? तो बाबा को कोई भाई थोड़े ही कहेंगे। हाँ वो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं और वो बाप है। तो वो नहीं ब्रदर्स हैं, वो बाप है। कौन है ब्रदर्स? मनुष्य सृष्टि में ब्रदर्स कौन है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सब आपस में ब्रदर्स हैं और वो बाप है। वो माने कौन बोल रहा है? ये वाणी कौन सी आत्मा चला रही है? शिव बाप ब्रह्मा के मुख से तो बताया वो बाप है। वो कहकर किसकी तरफ इशारा किया है? मनुष्य सृष्टि के बाप की तरफ इशारा किया। तो वो हमारा भाई है, वो तो कहने से भाई को बंधु भी कहते हैं, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, मित्र अगर कहें, सखा माने मित्र। हाँ, मित्र तो नंबर वन है। क्या मुसलमान भी क्या कहते हैं? खुदा दोस्त, एकदम नंबर वन मित्र, सुख देने वाला है। अब इन सब विचारों को छोड़ करके सबसे पहला नंबर विचार है कि अभी तो हमें ये अपन को नग्न बनना है। देह रूपी वस्त्र को छोड़कर नंगे होकर जाना है। कहाँ जाना है? है अरे, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो पहले पहले माँ के पेट रूपी घर में आत्मा आती है या शरीर आता है? है शरीर आता है, फिर आत्मा आती है। तो माँ के घर में भी बच्चा नंगा आता है ना, कि शरीर लेकर आता है? है फिर शरीर कहाँ मिलता? माँ के गर्भ से शरीर मिलता। तो नंगे आए थे, ये बेहद का मात पिता है। सृष्टि का चक्कर लगाया, लगाया ना, तीनों काल का चक्कर लगाया ना, अभी नंगे जाना है। ये पुराने शरीर तो यहां खत्म होने हैं और नंगे भी होवे और पवित्र होवे, तब ही जा सकेंगे। क्या अपवित्र आत्मा तो 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई भी आत्मा अपवित्र तो जा ही नहीं सकती। अगर कोई जावे भी, ये साकार मनुष्य सृष्टि छोड़कर मान लो बड़े बड़े भूकंप आते हैं महाविनाश में, तो अकाले मौत बहुतों का होगा ना। तो शरीर छोड़ेंगे ना, तो शरीर छोड़ने के समय अकाले मौत वालों को ये कहेंगे कि पवित्र आत्मा बन गई, सूक्ष्म शरीर का बंधन तो बन जाता है। जो स्थूल शरीर का बंधन है उसके मुकाबले सूक्ष्म में और ज्यादा ताकत होती है या कम ताकत होती है? ज्यादा ताकत होती है। खुदा न खास्ता कोई अकाले मौत में शरीर छोड़ते हैं तो भी कोई पवित्र थोड़े ही बन जाते, सजा तो खानी पड़ेगी। क्या सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भी सजा खानी पड़े? ये सब बातें अपने आप में सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करना होता है। और याद भी करना होता है। दोनों बातों में क्या अंतर है? विचार सागर मंथन करने में और याद करने में दोनों बातों में क्या अंतर है? है? अरे कुछ अंतर है या बराबर है? क्या अंतर है? विचार सागर मंथन आत्मा करती है, मन सूक्ष्म वतनवासी है। इस दीन दुनिया से मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊंचे स्तर में है कि नीचे स्तर में है? ऊंचे स्तर में है, सूक्ष्म वतनवासी है। कोई ब्रह्मा के स्तर में है, कोई विष्णु के स्तर में है, कोई शंकर के स्तर में है। मना जो शंकर के स्तर वाली आत्माएं हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाली, वो निराकारी लोक के नजदीक हैं, बिल्कुल नजदीक। या विष्णुपुरी और ब्रह्मापुरी की तरह दूर हैं, है? बिल्कुल नजदीक हैं। तो मक्खन निकालना होता है, मक्खन माने सार। कैसे निकलता है? मंथन करेंगे तो मंथन निकलेगा। क्या मंथन निकलेगा? मैं आत्मा कौन, मुझे आत्मा का इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर क्या विशेष पार्ट है? ये मक्खन निकलता है कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा तो हूं, लेकिन 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में मेरी स्टेज क्या है? तो सवेरे में ये मक्खन निकलता है। क्यों सवेरे में? क्यों है? अरे सवेरे में क्या होता है? स्थूल दुनिया में भी क्या होता है? है? सूर्य निकलता है। सूर्य निकलने से पहले जो ज्यादा चमकने वाले सितारे होते हैं वो प्रत्यक्ष नजर आते हैं। ध्रुव तारा भी होगा तो अमृत वेले देखने में आता है, ये रात्रि के 12-1 बजे देखने में आता है, अमृत वेले देखने में आता है। सप्तऋषि है, शुक्र तारा है, शुक्राचार्य की यादगार जो असुरों का गुरु माना जाता है, वो भी कब देखने में आता है? अमृत वेले देखने में आता है। तो सवेरे सवेरे ये मक्खन निकालना होता है, मंथन करके ज्ञान सागर का मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। कौन है ज्ञान सागर, कौन है सूर्य, कौन है धरणी, कौन है वेद का चंद्रमा, कौन है वो धरती के सितारे, वो आसमान के सितारे जड़ सितारे, वो भी हमारी यादगार हैं, ऊंची स्टेज में चमकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम धरती के सितारे भी जब ऊंची स्टेज याद की पकड़ते हैं तो संसार में रोशनी मारते हैं, हमारे स्वरूप की चमक दुनिया में पहुंचती है। तो सवेरे में बहुत कुछ करना होता है, हद का सवेरा या बेहद का सवेरा कब होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के सवेरे का टाइम कौन सा है? है? वो तो हद की बात हो गई। अमेरिका में दो और टाइम पर बजेगा, जापान में और टाइम पर बजेगा, इंडिया में सवेरे का 2 बजे और टाइम पर, अलग अलग प्रकार के धर्मों की धर्मखंड है ना। एक ही धर्मखंड तो नहीं है, तो जिस धर्मखंड में जिन आत्माओं को पार्ट बजाना है उनका अमृत वेला भी आगे पीछे होगा या नहीं होगा? तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जब रिहर्सल होती है ब्रॉड ड्रामा की तो अमृत वेले का टाइम कौन सा है? ऐसे तो सभी धर्म पिताओं की तरह सत्य सनातन धर्म का धर्म पिता वो भी धर्म की स्थापना में 100 साल लेता है ज्यादा से ज्यादा। तो उन 100 साल के अंदर दुखदाम सुखदाम और शांतिदाम तीनों की रिहर्सल होती है या नहीं होती है? संगम में रिहर्सल होती है। तो वेद का सूर्य उदय होने की वेला कौन सी है? उस वेला का पता होगा तो ज्यादा ध्यान देंगे, उस वेला का ही पता नहीं होगा तो ज्यादा ध्यान देंगे? फाइनल एग्जाम का टाइम डिक्लेयर होता है तो ज्यादा मेहनत करते हैं ना। तो बेहद का अमृत वेले का 100 साल के संगम युग में कौन सा टाइम है? है? कब है? कब? अरे 100 साल के संगम युग में वो महाशिवरात्रि कब है? जब ज्ञान सूर्य उदय होता है, जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। वेद के दो बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। उनको इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अलग अलग किया जा सकता है? है? नहीं किया जा सकता। तो वो तो एक बाप की बात हुई, बाकी सब मनुष्य सृष्टि में जो निराकारी सो साकारी बाप है, जिसकी यादगार शिवलिंग है, वो शिवलिंग सदा पूज्य है या पुजारी भी है? है? शिवलिंग है पुजारी भी है, कब पूजा करता है? पूजा का कोई टाइम भी होगा? बाबा ने तो चार चित्र बनवाई दिए। भारत में भक्ति मार्ग में जो पूजा होती है, वो भी सीढ़ी के चित्र में दिखाया है। तो वो शिवलिंग कब पूजा करता है? है? द्वापर के आदि में शिवलिंग पूजा करता है कि विक्रमादित्य पूजा करता है? है? कौन पूजा करता है? विक्रमादित्य पूजा करता है। विक्रमादित्य कौन सी आत्मा है? सत्यों के आदि का पत्ता, 16 कला श्री कृष्ण की आत्मा है। देह का सुख लेने वाली है, देह की इंद्रियां, आंखों का सुख लेने वाली है या आत्मिक सुख लेने वाली है? देह विनाशी, तो देह की आंखों का सुख भी विनाशी। तो नीचे गुरना होता है या ऊपर उठना होता है? परंतु उस मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते को जन्म देने वाला उससे ऊपर की पीढ़ी का हुआ ना, तो ज्यादा पावरफुल होगा या बराबर होगा? तो कितनी ज्यादा पावर होती है? दस इंद्रियां हैं, इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। दस इंद्रियों में कर्म इंद्रियां नीची मानी जाती है, जिनसे भ्रष्ट कर्म होते हैं, और ज्ञान इंद्रियां ऊंची मानी जाती हैं। तो इंद्रियों से सुख लेने वाले चाहे देवताएं हो, चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो, इंद्रियों से सुख लेने वाले भोगी हैं या अभोक्ता हैं? हैं तो सभी मनुष्य आत्माएं, परंतु उन आत्माओं के बीच में एक ऐसी आत्मा भी है मनुष्य आत्माओं का बाप, जो संघ के रंग में तो आता है, इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट भी बजाता है, परंतु पतनोन्मुखी आत्माओं के बीच, पतन की ओर जाने वाली आत्माओं के बीच, पतन की जो धारा है, गति है, वो एक जैसी है या अंतर है? है अंतर पर जाता है। ये अंतर का फाउंडेशन कहां पड़ता है? है संगम में पड़ता है। कैसे? अरे जो ज्यादा याद करेगा तो ज्यादा पावरफुल बनेगा या एक जैसा बनेगा? और ज्यादा याद कौन करेगा? है जिसमें बाप का ज्ञान होगा, ज्ञान माने जानकारी, बाप की पहचान होगी, ज्यादा जानकारी होगी, ज्यादा पहचान होगी, तो योग ज्यादा अच्छा लगेगा, याद ज्यादा अच्छी आएगी। तो मूल चीज क्या हुई? मूल बात ज्ञान है या योग है? है मूल बात याद है। मूल माने पहले, मूल माने जड़। वृक्ष की मूल पहले होती है या टहनियां पत्ते पहले होते हैं? तो मूल बात क्या है ज्ञान और योग में? ज्ञान। इसलिए गीता में लिखा है नहीं ज्ञान सर्दसम पवित्रम इह विद्यते। यह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं, और दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से ही होते हैं। योग की सिद्धि भी कैसे होती है? है अरे ज्ञान गहरा होगा तो योग की सिद्धि होगी, या बाप की ज्ञान की पहचान ही नहीं होगी तो सिद्धि होगी? बाप की पहचान जितनी गहरी होगी उतनी ही सिद्धि होगी। बाप में ज्ञान कैसा है? जो आत्माओं का बाप है, सुप्रीम फादर, उसमें क्या खासियत है ज्ञान की? है ज्ञान का अखूट भंडार, त्रिकाल दर्शिता का ज्ञान। तो किसके तीनों काल कहें है? अरे धर्म पिताएं हैं वो तो रंगमंच पर एक साथ नहीं आते, अलग अलग टाइम है ना कि तीनों काल में होते हैं रंगमंच पर। कोई बाद में आता, कोई पहले आता। वो तो द्वैतवादी धर्म पिताएं हैं जो द्वापर युग से आते हैं, परंतु देव आत्माएं तो पहले ही सतयुग त्रेता में होती है, रामकृष्ण की दुनिया में होती है। तो धर्म पिताओं ने ज्यादा लंबा चक्कर लगाया या देवताओं ने ज्यादा लंबा चक्कर लगाया षष्ठी चक्र का? और देवताओं में भी अब्बल लंबर देवता कौन है? देवदेव महादेव। देवताओं में बड़े देवता त्रिदेव, और त्रिदेव में भी ब्रह्मा देव, विष्णु देव और देवदेव महादेव का गायन है। जिनके माँ बाप का नाम कोई को पता नहीं, उनके माँ बाप होते हैं है? नहीं होते तो सुप्रीम सोल बाप शिव को इस षष्ठी रूपी रंगमंच में कौन सी आत्मा है जिसके तीनों काल का ज्ञान है? है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के तीनों काल का ज्ञान है। तीनों काल का ज्ञान जब परिपक्व स्टेज में आता है तब कहा जाता है त्रिकालदर्शी। उस तीनों काल में से दो चार दिन कम, दो चार महीने कम हो जाए तो त्रिकालदर्शी कहेंगे है? नहीं कहेंगे। जैसे कहते हैं कोई वृक्ष के बीज का ज्ञान हो, बीज हथेली पर आ जाए, नीम का बीज हो, आम का बीज हो, हथेली पर आ जाए तो उसके वृक्ष का खाका बुद्धि में खिंच जाता है या नहीं है? खिंच जाता है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि में जो सदा काल है तीनों काल में मौजूद है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज तीनों काल का स्वरूप परिपक्व शिव की बुद्धि में आता है, और उस पूरे चक्र का ज्ञान है। ज्ञान का परिपक्व बीज कहो, जिसके लिए गीता में बोला अहम बीज प्रदप्पिता, मैं ज्ञान का बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। पिता बीज किस में डालता है? किसान बीज किस में डालता है? धरणी में डालता है। धारणा शक्ति में बीज डालता है। राजाओं की भी धारणा शक्ति होती है, स्थूल में भी होती है, चैतन्य में भी होती है। स्थूल में भी भारत माता है, चैतन्य में भी भारत माता है। तो ये बेहद की ब्राह्मणों की सृष्टि है, इस बेहद ब्राह्मणों की सृष्टि में अहम बीज प्रदप्पिता कौन है? है कौन आत्मा है? अरे अरे ज्ञान का बीज कौन डालता है? इतना भूल गए, शिव बाप। उस बीज के समान सशक्त बीज दुनिया में कोई नहीं होता है। और वो परम पिता है। क्या? परम माने सुप्रीम। परम पिता है तो जिस माता का आधार लेगा बीज डालने के लिए, वो भी साधारण ब्रह्मा होगा क्या? है परम ब्रह्म ही कहा जाता है, इसलिए शास्त्रों में भी विख्यात है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तो निराकार आत्माओं का निराकार बाप निराकार ज्ञान का बीज देन डालने के लिए किसको चुनता है? परम ब्रह्म को चुनता है। परम माने बड़ी ते बड़ी, परे ते परे माता को चुनता है। माने बोलता तो यूं है ब्रह्म वाक्य में कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो किसमें प्रवेश करता है? अरे प्रवेश किसमें करता है? अरे माता में प्रवेश करता है या पुरुष तन में प्रवेश करता है? माता में प्रवेश करता है। दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया तो तन पुरुष का था या स्त्री चोला था? फिर नाम क्या दिया? सन 47 में ब्रह्मा नाम दिया ना। माना जिसमें भी प्रवेश करता हूं काम निकालने के लिए, काम के आधार पर नाम ब्रह्मा पड़ता है। तो क्या काम निकालना है? है नई सृष्टि का फाउंडेशन डालना है। तो नई सृष्टि में कौन से वंश की आत्माएं होती हैं? है जब ज्ञान का बीज डालता है तो उस ज्ञान यज्ञ का नाम क्या होता है? सिर्फ रुद्र ज्ञान यज्ञ है या अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, सारी दुनिया का भले विनाश हो जाए लेकिन इससे ज्ञान यज्ञ का विनाश नहीं होगा। क्यों? सत्य को त्रेता में ज्ञान रहता है क्या? है हाँ, ज्ञान का सार रहता है। जो भी देवताएं हैं वो कौन सी स्मृति में रहते हैं? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तो सार तो रहता है ना। फिर जब द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है तो विस्तार शुरू हो जाता है वृक्ष का। और जब वृक्ष का विस्तार होता है मनुष्य सृष्टि का, तो भी जो ज्ञान यज्ञ उसका विनाश हो जाता है क्या? है नहीं होता। क्यों? इब्राहिम आता है, दृष्टि के व्यभिचार का कचड़ा डालता है, तो ये ईश्वरीय ज्ञान है, है? ये तो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ब्रह्म वाक्य मुरली में है। बल पतित दुनिया में पतित होना है वो तो कायदा है। क्या? कि पतित दुनिया में पतित तो सब होते हैं लेकिन एक के साथ पतित होना है। जैसे देवात्माएं राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी, ऐसे ही सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में सभी देवताओं का अभिविचार ही याद प्यार था। फिर द्वापर युग से द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है। तो दृष्टिवृत्ति का कचरा पढ़ना आरंभ हो जाता है, विविचार की दुनिया शुरू हो जाती है। इसे ज्ञान कहें है? इसे ज्ञान कहें या अज्ञान का फाउंडेशन कहें? अज्ञान का फाउंडेशन कहें। जहां अज्ञान होता है वहां सुख होता है या दुख होता है? तो दुख की दुनिया शुरू हो जाती है। तो क्या जो रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी नाम पड़ा वो ज्ञान यज्ञ विनाशी हो गया? हा? नहीं नहीं क्या? अरे विनाशी नहीं हुआ है? कैसे है? हाँ, जो सत्य सनातन देवी देवता धर्म है वो सत्य सनातन धर्म प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता है। बाकी सब धर्म, बाकी सब देहधारी धर्म, धर्म पिताओं के स्थापन किए हुए सब लुप्त तो हो जाते हैं, उनके धर्मखंड भी लोप हो जाते हैं। समंदर के अंतराल में समाये जाते हैं। तो ना अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ समाप्त होता है, न ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो धर्म स्थापन होता है वो भी समाप्त नहीं होता। तो द्वापर के आदि में कैसे रहता है अविनाशी? है शिवलिंग की पूजा, पत्थर की पूजा, ये ज्ञान है? पत्थर की पूजा करना ये ज्ञान है? अरे ज्ञान है, अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, अंधापन है, या ज्ञान है? अंधविश्वास है तो फिर बताओ, जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है वो द्वापर के आदि में क्या है? अरे वेदों का नाम सुना है? वेदवाणी सुनी? वेदवाणी जो कही जाती है उस वेदवाणी के साथ कौन सी शख्सियत है जिसका नाम जुड़ा हुआ है? है वेद व्यास। वो वेद व्यास है, वेद माने जानकारी। जानकारी रखने वाला, वी माने विशेष, आस माने बैठ गया। किस बात के लिए बैठ गया है? है उसी बात के लिए बैठ गया कि जब प्रैक्टिकल में भगवान संगम में आते हैं नई दुनिया की रिहर्सल कराने के लिए, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए, तो किस में आते हैं? ब्रह्म वाक्य है, मैं भारत में आता हूं। किस में आता हूं? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। तो क्या सतयुग त्रेता में ही आत्मा में ज्ञान की रोशनी होती है? द्वापर कलयुग में कहीं भी ज्ञान की रोशनी नहीं रहती? रहती है या नहीं रहती? रहती है, वही आत्मा जिसका नाम भारत है। जिस भारत पर भगवान फिदा होता है, आशिक बनकर आता है। परम पुरुष को क्या चाहिए है? मासू का चाहिए ना? तो दुनिया के मनुष्य भी किस रास्ते पर चलते हैं? है जो गीता में बोला, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। दुनिया में जो भी मनुष्य हैं वो सात्विक स्टेज में मेरे रास्ते पर ही चलते हैं। तामसी बनते हैं, संग के रंग में आते हैं, तब की बात दूसरी। तो भगवान जिस पर आशिक होकर आता है वो क्या हुआ है? माशूक हुआ। जो ऊंचते ऊंचे है आत्मा वो ही आशिक है, तो बाकी सब मनुष्य मात्र क्या हुए है? आशिक हुए या माशूक हुए है? आशिक हुए। और जो आशिक होते हैं वो माशूक के पीछे भागते हैं या माशूक भागता है आशिक के पीछे है? आशिक माशूक के पीछे भागते हैं। दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को आशिक होकर इस मनुष्य सृष्टि रूपी चक्र में एक टाइम जरूर आता है, नास्तिक से नास्तिक मनुष्य आत्मा क्यों न हो उसे भी एक के ऊपर आशिक होकर उसके पीछे पीछे भागना पड़े। तो एक है माशूक और बाकी सब है आशिक। तो बताया आशिक पुरुष होता है या स्त्री चोला होता है? है पुरुष होता है। सभी प्राणियों में प्राणी मात्र की बात है, ये नहीं कि मनुष्य की बात है। मेल आशिक होता है और फीमेल माशूक होता है। लेकिन ये जो बेहद का आशिक है शिव बाप, जिस माशूक का आशिक बनता है वो मेल होता है या फीमेल होता है? है मेल होता है। इसलिए बोला मैं जिसमें भी प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। किस लिए? शास्त्रों में नाम किस लिए आए हैं? है जैसा काम किया है वैसे नाम आए। तो परम पुरुष को माशूक से क्या काम लेना है? दुनिया में भी जो भी आशिक पुरुष होते हैं प्राणी मात्र होते हैं वो अपना परिवार रचने के लिए जीवन में ऐसी स्टेज आती है ऐसी परिपक्वता की स्टेज आती है, शक्ति संचय की परिपक्वता कि वो अपने को शक्ति को थाम कर नहीं रख सकते। कोई मनुष्य मात्र कोई प्राणी मात्र हो हिस्ट्री में दुनिया का जो अपनी शक्ति संचय के परिपक्वता की स्थिति में उस पौरुष की शक्ति को सारा जीवन अपने में स्थिर करके रखा हो। कोई हुआ है? कोई नहीं हुआ। तो ये परंपरा भी किसने डाली है? परम पुरुष ने डाली। पुरु माने शरीर रूपी पूरे, श माने शयन करने वाला। जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करता है, कभी भी बेआरामी महसूस नहीं करता, वो कौन आत्मा है? है शिव बाप। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आता है, पतित से पतित कामी कांटे में प्रवेश करता है, पतित दुनिया में आता है, पतित देश में आता है। कहां आता है? पतित देश में आता है, जिस देश की हर रेलवे स्टेशन और बसें इकट्ठी होती हैं, कहां के क्या कहते हैं है? बस स्टेशन, जहां का नाम गंध ही गंध पर पड़ता है, उनमें भी जिस स्थान का नाम कायम गंध पड़ता है, कैसी गंध? सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक गंध कायम रहती है। ये बीज रूप आत्माओं के प्रैक्टिकल में ज्ञान में जन्म लेने की बात है। क्या कहा? बच्चा जन्म लेता है तो कहां जाना पड़ता है आत्मा को? है मात पिता के घर जाना पड़ता है। तो बताया, जहां जाना है और वहां से आना भी है। शूटिंग पीरियड की बात है, शूटिंग पीरियड में ही सुखदाम की प्ले रिहर्सल करते हैं और शूटिंग पीरियड में ही दुखदाम की भी रिहर्सल करते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी की मत का अनुगमन करते हैं तो सुखदाम की शूटिंग होती है, और देहधारियों का अनुगमन करते हैं, मनमत का अनुगमन करते हैं तो काई की शूटिंग होती, दुखदाम की शूटिंग होती है। और पुरुषार्थ करते करते जब आत्मा परमानेंट गले का हार बन जाती है तब कहां की शूटिंग करते हैं? आत्म की स्थिति परमानेंट हो जाती है तब शांति धाम की शूटिंग करते हैं। इसलिए वेदवाणी ब्रह्म वाक्य है मुरली में, बाप को याद करो, घर को याद करो और स्वर को याद करो। फिर ये भी कहते मेरा तो एक दूसरा ना कोई, शिव बाबा को याद करें या बेबिचारी याद करें, अनेकों की याद करें है? तो ये तो तीन हो गए है? तीन नहीं हो गए, वो हमारा बाप भी है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो शिव समान स्टेज धारण करता है, याद की परिपक्व स्टेज में, तो वो ज्योति बिंदु रूप बाप भी है जो यादगार में हीरा दिखाया गया सोमनाथ मंदिर में, और वो आत्मा का आधार स्वरूप भी दिखाया गया है साथ में। आत्मा का आधार क्या है? है लिंग रूप, जो गीता में बताया अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति तो है, मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार, तो वो मूर्त तो है लेकिन अव्यक्त मूर्त। व्यक्त माने आंखों से देखने योग्य, अव्यक्त माने जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो वो अव्यक्त मूर्ति है लिंग रूप। क्यों? मंदिर में जाते हैं तो लिंग आंखों से देखने में नहीं आता, आता है ना, तो मूर्त हुआ या अमूर्त हुआ है? मूर्त है। फिर गीता में अमूर्त क्यों कह दिया? क्योंकि उस लिंग में हाथ पांव नाक आंख कान चित्रकार ने नहीं दिखाए, शास्त्रकार ने नहीं दिखाए, तो झूठी बात लिख दी चित्रकार ने, झूठा चित्र बनाई दिया या सही चित्र बनाया? सही। क्यों? है सही इसलिए कि वो लिंग रूप बड़ा रूप साकार तो है, शरीरधारी तो है, लेकिन जो शरीरधारी आत्मा है, हीरा के रूप में पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा, उसको इंद्रियों का भान नहीं है, कर्मातीत स्टेज को पहुंच जाता है, इंद्रियों से अतीत की स्टेज को पहुंच जाता है। इसलिए बोला है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियों में भी नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार होते हैं। तो आखिरीन कोई तो एक आत्मा होगी जो पहले पहले इंद्रियातीत स्टेज में पहुंचे और इंद्रियों में भी जो प्रबल कर्मेंद्रिय है, कामेंद्रिय, जिसके लिए बोलते हैं काम जीते जगत जीत, और उस इंद्रिय पर भी जीत पाने वाली ग्यारहवीं इंद्रिय मन, उसके लिए भी बोलते हैं मन जीते जगत जीत। तो शास्त्रों में एक ही शख्सियत का गायन है जिसने काम को भस्म किया। भक्तों ने तो दिखाई दिया कि वो कोई काम देवता बाहर का था, नहीं, हर मनुष्य आत्मा के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कमजोरी भरी रहती है द्वैतवादी द्वापर युग से। तो उनमें भी नंबर वार हैं जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कमजोरी भरी रहती है। उन कमजोरियों में जो मुख्य डकैत है, चोर है, वो है कामदेव, प्रसिद्ध है शास्त्रों में, उसको भस्म किया, मार नहीं दिया, सिर्फ क्या किया, भस्म कर दिया। जो बोला है अव्यक्त वाणी में, अब देखेंगे कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं और नंबरवार कितने निकलते हैं। तो बोला है तो प्रैक्टिकल में भी होना है या नहीं होना है, तो कहा जाता है जो अब्बल नंबर में ओटे सो अर्जुन, अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल किया या अर्जुन के रथ को कंट्रोल किया, है रथ को कंट्रोल किया, नाम दिया अर्जुन, क्या अर्जन करने वाला है, ज्ञान धन का अर्जन करने वाला, ज्ञान धन के आधार पर सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, सद्भाग्य के आधार पर उस रथ का वेदवाणी में क्या टाइटल दिया है, अरे कैसा रथ है, भाग्यशाली रथ। इसलिए पिछली वाणी में आया आत्मा ही भाग्यशाली बनती है, आत्मा ही दुर्भाग्यशाली बनती है। दुर्भाग्यशाली और भाग्यशाली संघ के रंग से बनती है या बिना संघ के रंग के बनती है? तो कैसे भाग्यशाली बनती है? किसके संग से भाग्यशाली बनती है? अरे है भाग्यशाली रथ को पहचाना तो संग के रंग से भाग्यशाली बनेगी, नहीं पहचाना है तो नहीं बनेगी। इसलिए बोला जिन्होंने पहचाना वो पतित पावन को बुलाते हैं, संघ का रंग लेने के लिए बार बार बुलाते हैं। जो पतित से पावन बनते नहीं वो बुलाते भी नहीं। अंदर की बात है या बाहर बोल के बोल बोल करने की बात है? अंदर की बात है। सिर्फ भक्तों की तरह गायन करने की बात नहीं है। हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। तो पतित पावन जिस एक का गायन है वो सिर्फ साकार है या सिर्फ निराकार है? है साकार और निराकार का मेल है। इसलिए रामायण में बोला है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार और निराकार, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही मिलकर के संसार के दुखों का हरण करते हैं। अकेले नहीं, क्या ये संसार सुख और दुख दोनों का खेल है या एक का खेल है? ये भी जोड़ी है, सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। तो आत्मा भाग्यशाली भी बनती है, दुर्भाग्यशाली भी बनती है। द्वापर युग से है दुर्भाग्यशाली बनती है, क्योंकि अनेक धर्म पिताएं आते हैं और उन धर्म पिताओं के प्रभाव में आने से भारतवासी जो मातृ देश कहा जाता है किसी की बातों से माताएं कन्याएं ज्यादा प्रभावित होती हैं या पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं? तो ये भारत मातृ देश है, क्योंकि मातृ देश का जो मुखिया है प्रैक्टिकल पार्टीधारी परमपिता का आधार क्या नामधारी हुआ? है। अरे परमपिता आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं क्या नाम देते हैं? परम ब्रह्म। क्या काम निकालने के लिए है? नई सृष्टि, नया परिवार रचने के लिए। ऐसा नया परिवार जिसे वसुधैव कुटुंबकम के नाम से सारे शास्त्रों में माना जाता है। सारी वसुधा के मनुष्य मात्र एक परिवार बनते हैं, कुटुंब बनते हैं। कब बनते हैं? जब एक बाप होता है तब बनते हैं, या इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट अनेकों बाप होते हैं तब बनते हैं? एक बाप होता है तो कभी हुआ है या नहीं हुआ है? होगा या नहीं होगा? होगा। निश्चय बुद्धि विजयते। तो बताया कि इन माता पिता में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, जो सब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि से बुद्धि योग हटाकर मनुष्य सृष्टि का क्या करते हैं? क्या महामंत्र देते हैं? मन मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। मेरे मन में समाजा। अरे तेरे मन में क्या समाया हुआ है? कौन कहता है मेरे मन में समाजा है? किसको मन है? निराकार शिव को मन है, या जिस साकार आत्मा में प्रवेश करता है उसको मन है? हैं? जिस साकार में प्रवेश करता है उसको मन है। वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? एक शिव बाप, दूसरा न कोई। शिव बाप माने ज्योति बिंदु। शिव किसका नाम है? बाप का नाम, बापों का बाप। उसके मन में क्या है? ज्योति बिंदु बाप। बाबा नहीं है? उसके मन में शिव बाबा नहीं, साकार निराकार का मेल नहीं है? नहीं है? हाँ, ब्रह्म वाक्य है। बोला तेरी बुद्धि में बाबा कहने से भी बिंदी ही याद आवेगी। तेरी माने एक या दो चार? एक ही आत्मा की तरफ इंट्रोड्यूस किया कि तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से दो आत्माएं याद नहीं आवेंगी, क्या एक ही याद आवेगा। एक कौन? बाप। दो नहीं याद आ सकते, क्यों? वर्षा देने वाला एक ही बाप होता है या दो होते हैं? एक ही बाप होता है, और वो एक परमपिता है। 84 जन्मों में तो अनेक पिता हुए, लेकिन वो जितने भी पिता इस मनुष्य सृष्टि पर होते हैं उनके बीच एक ही परेते परे स्टेज में रहने वाला परेते परे शक्ति वाला परम पिता एक ही है। पिता माने वर्षा। जो परम वर्षा देता है उससे बड़ा वर्षा कोई भी बाप नहीं दे सकता। क्यों? मनुष्य सृष्टि में सतयुग में जो पहला पत्ता कृष्ण है उसको बड़ा वर्षा नहीं मिलता। मनुष्य सृष्टि में जो 500-700 करोड़ पत्ते हैं चैतन्य आत्माएं, उन आत्माओं के बीच उस कृष्ण 16 कला संपूर्ण को बड़ा तो बड़ा वर्षा नहीं मिलता। अरे मिलता है या नहीं मिलता है? है? नहीं मिलता। अरे 500-700 करोड़ बच्चों के बीच में, मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़े से बड़ा वर्षा नहीं मिलता है? मिलता है ना, सबसे बड़ा वर्षा मिलता है। अरे जितना बड़ा बाप होगा उतना बड़ा वर्षा देगा। सामान्य बाप होगा तो सामान्य वर्षा देगा। वो बेहद का बाप है जिसका कोई बाप नहीं। क्या उससे ऊंचा कोई बाप होता ही नहीं? उसे कहते ही है परमपिता। और सारी मनुष्य सृष्टि उसे परमपिता मान भी लेती है। इसलिए ब्रह्म वाक्य फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। क्या सभी धर्म के फॉलोअर्स अपने धर्म पिता को ही बेहद का फादर मानते हैं या उससे भी ऊंचा किसी और को मानते हैं? है? सुप्रीम गॉड फादर को तो धर्म पिता तो नहीं मानते। धर्म पिता अलग और सुप्रीम गॉड फादर अलग। तो देखो जो ऊंचे थे ऊंचा बाप, बाप माने वर्षा, वो फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। सारी मनुष्य सृष्टि का फादर है या सिर्फ धर्म पिताओं का फादर है? जैसे क्राइस्ट के लिए कहते हैं, क्राइस्ट गॉड फादर का बच्चा है, बाबा ब्रह्मबा की मुरली में टांट मारते हैं, क्राइस्ट गॉड फादर का बच्चा है तो बाकी सब भतीजे हैं क्या? ऐसे तो है नहीं। सारी दुनिया उस फादर का बच्चा है और फादर से कुछ प्राप्ति की है तब ही फादर है कि ऐसे ही याद करती है? जिससे सुख मिलता है वो याद आता है या नहीं याद आता है? है? याद जरूर आता है। मृत्यु के समय स्त्री को पति याद आता है, तो पति के स्वरूप में ऐसी तल्लीन हो जाती है, अंतमते सोगते हो जाती है, पुरुष चोला मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष को भी अंत समय मृत्यु के समय जिससे जीवन में जास्ती सुख लिया है इंद्रियों के द्वारा, वो अंत समय में जरूर याद आता है। तो पुरुष को काहे का जन्म मिलता, अंतमते सो गते हो जाती, स्त्री चोला मिल जाता। तो याद का इतना महत्व है, ये है परमपिता की याद। परंतु त्रेसठ जन्मों में जो याद किया है वो साकार को याद किया है, साकार देहधारियों को याद किया है या निराकार आत्माओं को याद किया है? टेव क्या पड़ी हुई है, अभ्यास क्या पड़ा हुआ है? साकार को याद करने का अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है। इसलिए बताया कि जन्म जन्मांतर का अभ्यास है तुम्हारा, तुम बच्चों का, साकार को याद करने का। तो सही रास्ता, सहज रास्ता बताता हूं। क्या करो? साकार में निराकार ज्योति बिंदु को याद करो। कौन से ज्योति बिंदु को याद करो? है कौन से ज्योति बिंदु को याद करो? आत्माओं के बाप को याद करो या मनुष्य आत्माओं के बाप को याद करो? है आत्माओं के बाप को याद करो। माना सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो आत्माओं के बाप की यादगार है, वो हीरा हीरो पाटधारी है, वो हीरा पत्थर है या नहीं है? तो आत्माओं का बाप पत्थर बुद्धि बनता है, वो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। इसलिए कहता है तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो, मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। माना सोमनाथ के मंदिर में जो प्रवृत्ति की यादगार है आत्मा रूपी पुरुष और शरीर रूपी लिंग, शरीर माने पांच तत्वों का पुतला, प्रकृति का पुतला। तो ये प्रकृति और पुरुष का खेल है, ये सृष्टि निवृत्ति का खेल नहीं है। सृष्टि कैसे चलती है? प्रवृत्ति से चलती है। तो इस प्रवृत्ति मार्ग का बीज कौन है? तुमेव माता च पिता तुमेव। उसका सात्विक रूप का यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाया। वो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा है वो हीरो पाटधारी आत्मा की यादगार है, जो पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज में याद करते करते क्या बन जाता है, है शिव ही बन जाता है, शिव समान। क्या कहें, शिव समान बन जाता है या शिव बाप बन जाता है, शिव समान बन जाता है। यही बात मुसलमान भी कहते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है वही आदम का नूर है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा, जेही जानौ तेही देव जनाई, ओ जानत तुम्हें ही हुई जाई। क्या कहा, किससे कहा है, तुलसीदास ने रामायण में कहा। किससे कहा, जिसको वो भगवान मानता है उससे कहा। क्या कहा, यही जानो हो तुम, यही माने जिसको, जानो हो माने जानते हो, तीनों कालों से जानते हो, वो तीनों कालों से किसको जानता है, है? वो त्रिकालदर्शी तीनों कालों से किसको जानता है, तीनों कालों में कौन सी ऐसी आत्मा है जो तीनों कालों में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रेजेंट रहती है, हाजिर रहती है। ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोल दिया, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। क्यों, शिव बाप नहीं है इस सृष्टि पर, शिव बाप सदा कायम नहीं, नहीं वो सदा कायम नहीं है। कौन सदा कायम है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसके लिए बोला ये जानो तुम, जिसको जानते हो तीनों कालों से, एक अंश मात्र भी कम नहीं तीनों कालों में, पूरे चक्र में तुम जानते हो उसको, ये जानो ते ही देव जनाई, जिसको तुम जानते हो उसको जानकारी दे देते हो। तुम किसको जानते हो, है तुम मानस शिव किसको जानता है तीनों कालों से, है मनुष्य सृष्टि के बाप को जानता है, उसके तीनों कालों को जानता है, एक दिन भी कम नहीं। जे ही जानो जिसको तुम जानते हो, ते ही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। किसकी जानकारी दे देते हो, अपनी आत्मा की जानकारी दे देते हो और आत्मा के बाप की जानकारी दे देते हो। पक्का कर लो, लिख लो, जे ही जानो जिसको तुम जानते हो, तेही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। काय की जानकारी दे देते हो, है अपने आप की जानकारी दे देते हो। जिसको जानकारी देते हो वो स्वयं कौन है उसकी भी जानकारी दे देते हो। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या क्या पार्ट बजाने वाला है मुख्य, वो भी जानकारी दे देते हो और अपनी भी जानकारी दे देते, फिर क्या होता है? जे ही जानो ते ही देव जनाई, और जानता तुम ही। वो जब जान लेता है तो जानने के बाद अंजाम क्या होता है? जे ही जानो ते ही देव जनाई, जानता तुम ही हो जाई। वो तुमको जानकर क्या हो जाता है? तुम ही बन जाता है। क्या तुम बन जाता है? है? शिव ही बन जाता है। शिव को जान लेता है तो जानने के बाद उसको याद करते करते क्या बन जाता है? तुम्हारे समान बन जाता है, तुम ही बन जाता है। माना निराकार बन जाता है या नहीं बन जाता है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है या नहीं बन जाता? बन जाता है। वो मिसाल सन्यासियों ने अपने ऊपर उठाई लिया, सारे जगत की आत्माओं के ऊपर उठा लिया और बोल दिया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते। क्या? सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम मिथ्या मिथ्या, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही है, उसको सागर से मिसाल दिया। हम सब क्या हैं? सागर के बुदबुदे हैं, बुलबुले, स्पाइसेस, छोटे बड़े मीडियम, सागर से ही उठते हैं और सागर में ही समा जाते हैं। कल्प कल्पांतर यही चलता रहता है। क्या? सागर से निकलते हैं और सागर में समा जाते हैं। अब बताओ ये मिसाल झूठा है या सच्चा है? है? सच्चा है। अरे मना जो बुदबुदा निकला सागर से, बलबूला निकला, कुछ पानी का अंश है ना? वो पानी का अंश है, खारापन सागर में ही मिक्स हो गया। फिर वो ही बुलबुला, वो ही बुदबुदा पानी का अंश दोबारा आएगा तो मिसाल झूठा है या सच्चा? लेकिन आत्माएं क्या हैं? आत्माएं विनाशी हैं बुलबुले की तरह या अविनाशी हैं? आत्माएं तो अविनाशी हैं। जिन आत्माओं में जितने जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है वो ही आत्माएं फिर सच रूपी रंगमंच पर आती हैं और फिर अपना पार्ट बजाती हैं, फिर महामृत्यु के समय फिर उसी में समा जाती है। परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है, मत योनि परम ब्रह्म महत ब्रह्म, मेरी योनि रूपा माता महत ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, तुरिया तत्व है, ऐसा तत्व है जिस तत्व में दुनिया के जो भी जड़ और चेतन प्रकृति के तत्व हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश और चैतन्य, पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, उन सब का सार उस परम ब्रह्म में समाय जाता है। क्या? उन सब का बीज काय में समा जाता, परम ब्रह्म में समा जाता, और उसी परम ब्रह्म से फिर उत्पन्न होते। आत्माएं भी उत्पन्न होती हैं और वो चैतन्य देवात्माएं जो जड़त्वमयी देवताएं हैं, इतने जड़त्वमयी बुद्धि हैं कि एक बाप को पहचान करके भी बाप के स्नेह के बंधन में नहीं बंधते, फिर रावण की पार्टी से बंध जाते हैं। वो बाप मनुष्य सृष्टि का, वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, फिर भी न कोई देवात्मा सतयुग में, न त्रेता में पहचान पाती, न द्वापर में पहचान पाती कि वो भारत जिस पर वो ऊंचे से ऊंचा फिदा होता है, वो भारत का पार्ट बजाने वाला शिव बाबा कौन है, जिसका नाम गीता में बार बार लिया गया भारत भारत, किसका नाम है भारत, किसका नाम है गीता में?
अरे
अर्जुन का नाम है। अर्जुन को क्या कहा? भारत। काय में रत रहने वाला? ज्ञान की बातों में रत रहने वाला। द्वापर में भी व्यास के रूप में वेद व्यास, और गीता में भी क्या श्लोक आया है, है? व्यास प्रसादात। गीता किसकी प्रसन्नता से मिली? व्यास की प्रसन्नता से मिली। व्यास की प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला। संगमयुगी ब्राह्मणों की दुनिया में विमाने विशेष आसमाने बैठ गया, कहते हैं शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा ने तीन बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची, तीनों बार बिगाड़ दी। ओम मंडली के नाम से आदि में रची तो उस काम को करने वाला जो गीता का व्याख्यान देता था, एक एक श्लोक का मर्म समझाता था आदि में, वो कौन था जिसके लिए ब्रह्मवाक की मुरली में बोला ऐसे ऐसे बच्चे थे जो ब्रह्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, हम समझते थे, हम माने ब्रह्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेंगे, तो क्या शूटिंग नहीं हुई व्यास की? हुई ना, विमाने विशेष आसमाने बैठ गए। ब्राह्मण जीवन में पहले ब्राह्मण के संगठन में जिसे ओम मंडली कहा गया वहां भी बैठ गया, दूसरा ब्राह्मणों का संगठन बना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उसमें भी किस बात के लिए जीवन में बैठ गया है, किस काम के लिए बैठ गया? अरे पेट के धंधे के लिए बैठ जाता है, देह के परिवार का पोषण करने के लिए बैठा रहता है, बैठा रहता नहीं। बताया व्यास वहां भी है दूसरी ब्राह्मणों की सृष्टि में, और फिर तीसरी ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे लिखा है, 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और ब्राह्मणों की नई सृष्टि का आरंभ हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। तो तीसरी जो ब्राह्मणों की दुनिया रची जाती है, उसमें भी कोई दूसरा धंधे के लिए जीवन में नहीं बैठता, किसके लिए बैठता है? है? अरे नाम है भारत, भारत में आता है, भारत नाम पड़ता है तो काम के आधार पर पड़ता है या ऐसे ही पड़ जाता है? काम के आधार पर पड़ता है। फिर गीता में लिख दिया है, वृक्षों में मैं ये वृक्ष हूं, पहाड़ों में मैं ये पहाड़ हूं, नदियों में मैं ये गंगा हूं। अरे वो भी ब्रह्म वाक्य में बोल दिया। क्या बोला मुरली में? सबसे बड़ा मुंह मियां मिट्ठू कौन है? शिव बाबा। क्या बोला? क्या बोला? शिव बाबा दुनिया का ऐसा पार्टधारी है जो गीता में भी विख्यात है, हर बात में अपनी बढ़ई। और ब्रह्म वाक्य मुरली में भी क्या बोला? ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो शिव बाप ने क्या वर्षा दिया? किसको वर्षा दिया? है शिव बाप ने किसको वर्षा दिया? दुनिया में भी जो भी बाप होते हैं या हिस्ट्री में भी जो भी यथा राजा तथा प्रजा हुए हैं बाप के रूप में, उन्होंने अपना वर्षा परिवार में कौन से भांति को दिया? है बड़े बच्चों को दिया। ये परंपरा किसने शुरू की? है शिव बाप ने शुरू की। निराकार बाप आते हैं तो निराकार आत्माओं का निराकार बाप निराकारी ज्ञान का वर्षा आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनमें जो बड़ा भाई है आत्म की स्थिति धारण करने में, उस बड़े भाई को वर्षा देता है। काई का वर्षा देता है? ज्ञान का वर्षा देता है। वो आत्माओं में बड़ा भाई है, इस बात की कोई तिथि तारीख निश्चित कर दी क्या? जो बड़ा भाई हो गया, अरे अरे बड़ा भाई छोटा भाई मझला भाई तिथि तारीख निश्चित होती है तभी तो कहा जाता है, नहीं है? तो कोई तिथि तारीख निश्चित कर दी कि ये बड़ा भाई है। अरे भूल गए, 5 दिसंबर वाली वाणी भूल गए, अव्यक्त वाणी याद है? है भूल गए, याद आ गया। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बोला कि जो देहधारी बच्चे हैं उन्होंने देह के हिसाब से बाप दादा जिनको मान रखा है वास्तव में मूल रूप में वो बाप दादा नहीं है जिनकी याद में 18 जनवरी स्मृति दिवस मनाते हैं। माना वो बाप दादा देह अभिमान में रचे पचे मनुष्य देहधारियों को देखते हैं या आत्माओं के बीच में देखते हैं? देहधारियों के बीच में देखते हैं कि देहधारियों में मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता बड़ा भाई दादा और उस पत्ते को जन्म देने वाला बीज कोई है या नहीं है? है? साकार मनुष्य सृष्टि का है या सिर्फ निराकार आत्मा है? साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। वो साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप मन राम बाप को कहा जाता है, ब्रह्म वाक्य है, और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो पहला पत्ता कृष्ण मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई हो गया। देहधारी आत्मा है ना, और उसको जन्म देने वाला पहले पत्ते कृष्ण को जन्म देने वाला जो राम बाप है, बीज है, सूर्यवंशी माना जाता है, रघुकुल मणि शिरोमणि कहा जाता है। रघु सूर्य का नाम है, सूर्य से सूर्यवंश शुरू होता है और चंद्रमा से चंद्रवंश शुरू होता है। चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है। सूर्य किससे रोशनी लेता है? स्वयं प्रकाशित होता है। लेकिन इस ब्राह्मणों की दुनिया में हमें पता है कि एक है ज्ञान सूर्य जो कभी किसी से अटैचमेंट नहीं रखता, बुद्धि रूपी आत्मा तो है, बुद्धिमानों की बुद्धि तो है, लेकिन जैसे वो सूर्य न पृथ्वी से, न पहाड़ों से, न नदियों से, न सागर से, कोई भी प्राणी मात्र से अटैचमेंट नहीं रखता, ऐसे ही वो आत्माओं का बाप ही है एक, जो कभी भी षष्ठ रूपी रंगमंच पर आते हुए भी कोई के संग के रंग में नहीं आता, कोई से भी अटैचमेंट नहीं रखता। लेकिन वो असली ज्ञान सूर्य जब षष्ठी रूपी रंगमंच पर आता है तो गीता के वचनानुसार अपना टाइटल इस मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो मनुष्यों का बीज है, आत्माओं के बीच जो बड़ा भाई है, उस बड़े भाई को अपना टाइटल दे देता है। क्या टाइटल है? अरे ये परंपरा दुनिया में खास भारतवर्ष में चलती कि नहीं? जो लकब है, जो टाइटल है, वो बाप का टाइटल बच्चे को मिलता है या नहीं मिलता है? ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? वही परंपरा है जो गीता में लिखी है। मैं जब आता हूं तो सबसे पहले ज्ञान किसको देता हूँ? सूर्य को ज्ञान देता हूँ। इस मनुष्य सृष्टि में जो सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला है, हीरो पाटधारी, जन्म जन्मांतर, उसको ज्ञान देता हूँ। और उससे डायरेक्ट जो बैठ करके, सन्मुख बैठ करके बाहर के दिखावे में सन्मुख बैठे हुए नहीं, क्या ऐसे भी होता है ना, बाहर से देखने में आता है कि सन्मुख बैठे हैं और अंदर अंदर संकल्प विरोधी संकल्प चल रहे हैं, तो उन्हें सन्मुख कहेंगे वास्तव में है नहीं कहेंगे? तो दोनों तरह से सन्मुख, अंतरात्मा से भी सन्मुख, विमुख नहीं, और बाहर की एक्टिविटी, बोलचाल, इशारेबाजी भी होती है ना, उस सब प्रकार से सन्मुख या विमुख? सन्मुख। जो रामायण में बोला है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहिं, जन्म कोटि अघ, माने पाप, जन्म कोटि अघ नाश ही तबहिं। क्या कब की बात है? ऐ संगम युग में भी कब की बात है? संगम युग तो 100 साल का, पुरुषोत्तम संगम युग में भी कौन कौन से समय की बात है? महाशिवरात्रि का अंत होगा, आदि नहीं है। अरे बच्चा पैदा होता है जिस घड़ी, तो कहते हैं ना, प्रत्यक्षता रूपी बच्चे का जन्म हुआ है नहीं हुआ? हुआ। बाबा ने भी बताया, अव्यक्तवाणी में भी बताया, जो देखे इन आंखों से उसके मुख से क्या निकले, मेरा बेहद का बाप आ गया। जो कानों से दो शब्द भी सुने, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं, दो शब्द भी सुने उसके मुख से क्या निकले अंदर की आवाज, मेरा बाप आ गया। जैसे लौकिक दुनिया में होता है, बच्चा पैदा होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, पहले गर्भ में गुप्त था, फिर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो पड़ोस का भी आवाज सुनता है, उआ उआ, तो क्या कहता है? पड़ोस में बच्चा आ गया, नहीं कहता? कहता है। फिर जो बच्चे को आकर देखते हैं वो भी क्या कहते? बच्चा आ गया। ये तो कोई नहीं कहता कि नहीं आ गया। ऐसे ही वो परम पिता की बात है, जो परमपिता कहता है कि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। क्या किसका किसका जन्म इकट्ठा है? बाप और बच्चे। कौन सा बाप, कौन सा बच्चा है? ज्योतिबिंदु शिव बाप, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो बाप और 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच जो पहले पहले बाप को पहचान लेता है, जान लेता है, समझ लेता है और उस स्वरूप में स्थित फिर भी हो जाता है। क्या कहा? सुनने मात्र से हो जाता है काम, मानने मात्र से काम हो जाता है, समझने समझाने मात्र से काम हो जाता है कि प्रैक्टिकल अनुभव करने से काम होता है? तो बताया 5 दिसंबर क्या बाप और बच्चे का मिलन पहली बार, कौन सी तारीख बताई? 5 दिसंबर। बहुत पुरानी अव्यक्तवाणी नहीं है, पिछले साल की अव्यक्तवाणी है। वो 5 दिसंबर को पहली बार सुप्रीम सोल बाप और जो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उनमें जो बड़ा भाई है, उस बड़े भाई मनुष्य सृष्टि का बाप जो कहा जाता है, उन दोनों का मिलन हुआ। पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उस रूप में प्रैक्टिकल याद में स्थिर होंगे, तब मिलन होगा। या एक देहभान में हो, देह की इंद्रियों की स्मृति में हो, भले थोड़े समय के लिए, निरंतर याद एक साथ बन जाती है या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस करने के आदि में जो पहली बार निराकारी स्टेज बनती है, आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच किसी बड़े बच्चे की, वो बड़ा बच्चा बाप के साथ पहली बार 5 दिसंबर को मिलता है। अनुभूति की बात है। क्या अनुभूति? अपन को आत्मिक रूप ज्योति बिंदु में देखो और फिर ज्योति बिंदु बाप से मिलन मेला मनाओ। उसको क्या कहेंगे? आत्मिक रूप में क्या संबंध कहेंगे? बाप और नहीं, बच्चों में बड़ा भाई, तो दूसरे दूसरे जो बच्चे हैं वो उस संबंध को क्या कहेंगे? बाप दादा। वो आत्मिक रूप का मेल है। और 5 दिसंबर की बात बताई जाने से पहले जिसे बाप दादा समझते थे, वो देहधारियों का मेल है या निराकार निराकार का मेल है? हैं? देहधारियों का मेल है। तो बताया एकदम सुख देने वाला वो है। कौन? सुख देने वाला सुख स्वरूप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? और सुख और दुख इंद्रियों से मिलता है, चाहे मन रूपी इंद्रिय कौन क्यों न हो, बिना इंद्रियों के भी मिलता है। है? इंद्रियों से ही सुख दुख मिलता है। तो एकदम सुख देने वाला नंबर वन मित्र, सखा तमेव। अभी इन सब विचार की बातों को छोड़ करके सबसे पहला नंबर का विचार है ये देह रूपी वस्त्र त्याग करके नंगा बनना। किस समय प्रैक्टिस करें ऐसी है, उठते उठते सबसे पहले क्या याद आनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए है, मैं देह रूपी वस्त्र नहीं हूं, क्या हूं, मैं नंगी ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और इतना ही नहीं, ये तो बेसिक ज्ञान है, फिर एडवांस ज्ञान क्या है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा तो हूं लेकिन बाप का कौन से नंबर का बच्चा हूं, कौन से नंबर में प्यार लेने वाला बच्चा हूं, कौन से नंबर में वर्षा लेने वाला बच्चा हूं। 500-700 करोड़ पार्टधारियों में मेरा पार्ट क्या है, तो ये मक्खन निकालना है सवेरे की याद में विचार सागर मंथन करके। बाप की याद से ये मक्खन निकलेगा क्या, मक्खन कैसे निकलेगा, बाप की याद से मक्खन निकालना है सवेरे में, सवेरे सवेरे बहुत कुछ करना होता है। तो वेद का सवेरा कौन सा है, है? पूरा 100 साल संगम युग वेद का सवेरा है या कोई स्पेशल सवेरा भी है, है? क्योंकि 100 साल जो है वो तो चारों युगों की शूटिंग का टाइम है, चारों युगों में क्या ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है सृष्टि पर, है? नहीं होता। कब होता है, है? कहेंगे संगम युग में, अरे संगम युग भी तो 100 साल का है, है? बाप और बच्चे का जन्म प्रत्यक्षता रूपी जन्म इस संसार में कब होता है, कौन है वो बाप और कौन है वो बच्चा, शिव बाप है बाप और बच्चा है मनुष्य सृष्टि का बाप, उस मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय कौन देता है, शिव बाप देता है, किसको देता है, है? तुम बच्चों को देता है, है? देता है, देता है। 76 से पहले कोई को पता चलता है कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, है? तो तब तक किसी को परिचय नहीं दिया, ब्रह्मा की वाणी नहीं चली है तो परिचय नहीं मिला। जो भी परिचय है शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से दिया ना, ब्रह्म वाक्य को ही वेदवाणी कहा जाता है ना, यही तो संसार में कहते हैं कि वेद किसके मुख से निकले, ब्रह्मा के मुख से निकले। तो जिस ब्रह्मा के मुख से वेद निकले वो वेदवाणी क्या हमने सालों साल नहीं सुनी, बेसिक में नहीं सुनी, एडवांस में नहीं सुनी, फिर पक्का निश्चय बुद्धि बने है, पक्का निश्चय बुद्धि नहीं बने है, मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी हैं? कहां के वासी हैं? मृत्युलोक के वासी। निश्चय रूपी जन्म नहीं हुआ बाप के बच्चे का, ये पक्का निश्चय नहीं हुआ कि मैं बाप का बच्चा बेहद के बाप का बच्चा बन गया। ये निश्चय रूपी जन्म हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ नहीं हुआ? अरे आधे जिंदा है आधे मर गए, तो हम मृत्युलोक में बैठे हैं या अमरलोक में बैठे हैं? है मृत्युलोक में बैठे, क्योंकि अभी छोटी मोटी परीक्षाएं माया की हुई हैं, अभी फाइनल पेपर तो हुआ ही नहीं है। जिस फाइनल पेपर के लिए ये कहते हैं कि माया किसी को नहीं छोड़ती, एक मायापति के सिवाय, सब के ऊपर वार करती है और सांप को पड़ी लेती है। बड़ी बेटी है या छोटी बेटी है? माया बड़ी बेटी है। बेटी ज्यादा बुद्धिमान होती है या बाप ज्यादा बुद्धिमान होता है? बाप ज्यादा बुद्धिमान होता है। बेटी कन्या होती है, कन्या में पवित्रता ज्यादा होती है या माता पिता में पवित्रता ज्यादा होती है? है बड़ी बेटी है तो बड़ी बेटी शास्त्रों में भी दिखाई गई है, भले याद न हो। माया बड़ी बेटी है और जगत पिता की पत्नी जगदम्बा है, तो बड़ी बेटी बड़ी होशियार है। जो अव्यक्तवाणी में बोला माया तंग आ चुकी है, क्या किससे तंग आ चुकी? बाप के बच्चों से तंग आ चुकी है, माया थक चुकी है। जो आदमी थक जाता है, हिम्मत हार जाता है तो शरीर भी छोड़ देता है। अब माया बेटी के प्रैक्टिकल बाप ने शरीर छोड़ा तो क्या पूरा देहभान छोड़ दिया या सूक्ष्म शरीर बना रहा? है बना रहा। तो जो बाप का अंजाम सो बेटी का अंजाम होता। सूक्ष्म शरीर धारण करने पर आत्मा ज्यादा पावरफुल हो जाती या कम पावरफुल हो जाती? ज्यादा पावरफुल हो गई बुद्धि से। तो माया ने क्या युक्ति रची है? हाँ, अम्मा को अपनी मुट्ठी में कर लिया, जगदम्बा को क्या किया? हाथ मिलाई लिया। मतलब पवित्र बुद्धि अपवित्र को बरगलाती है या अपवित्र बुद्धि पवित्र को बरगलाती है? है ऊपर से पवित्र आत्माएं आती है धर्म पिताओं की, आती है ना? तो जो भारतवासी आत्माएं अनेक जन्मों से इंद्रियों का सुख भोगते भोगते कमजोर हो जाती हैं, पवित्रता कुछ खंडित हुई ना, तो उनके प्रभाव में आ जाती। ऐसे ही माया बड़ी बेटी है, पवित्र बाप बाप की पवित्र बच्ची है। तो युक्ति रच लेती है। क्या युक्ति रची? मां को अपने पक्ष में ले लिया। अब क्यों मां को अपने पक्ष में लिया? परिवार के दूसरे भाई बहनों को पक्ष में क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि माया जानती है बाप अपनी सारी शक्ति परिवार की किसको सौंपता है? हैं? एड़ी चोटी की पावर किसको दे देता है? माता को दे देता है। तो माया बेटी जानती है कि ये जगदम्बा प्रकृति जो है बड़ी पावरफुल है। क्या? इस प्रकृति का जो मुख्य तत्व पृथ्वी है, पृथ्वी माता, वो जब भूकंप लाती है तो सारी मनुष्य सृष्टि का लगभग विनाश हो जाता है। बड़ा विनाश होता है भूकंप से, जलमय से नहीं। इतनी पावरफुल है तो हाथ मिला लेती, तो ताकत बढ़ गई या कम हो गई? है ताकत बढ़ गई। और जब ताकत बढ़ गई तो परिवार के जितने भी भांति हैं, छोटे छोटे भाई बहन, उनको कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती। अभी तक तो छोटी मोटी परीक्षाएं हुई और अभी फाइनल पेपर सामने खड़ा हुआ है। क्या क्या बोला है? युवाओं के द्वारा क्या होने वाला है? अरे अव्यक्तवाणी के लास्ट संदेश में क्या बोल दिया है? अरे युवाएं क्या करने वाले हैं? परमात्म प्रत्यक्षता जो सबसे बड़ा बम है वो फोड़ने वाले हैं। छोटी मोटी बम्बियां हिरोशिमा नागासाकी पर छोड़ी गई तो आज तक उस समय के घायल पड़े हुए कराए रहे हैं हॉस्पिटल्स में। अभी तो हजारों हजार वाट के बम बन चुके। वो फटेंगे। हर हर बम बम। तो क्या होगा? और उनमें भी सबसे बड़ा बम, बड़े से बड़ा बम, जैसे राम की राजगद्दी दिखाते हैं दशहरा के बाद दीपावली पर, तो कम बुद्धि वाले बच्चा बुद्धि क्या करते हैं? है? धीरे धीरे फटाके फोड़ते रहते हैं यहां वहां वहां, इस शहर में वह शहर में। बेचारे बाप को तो नहीं जानते। बेहद के बाप को जानते हैं? नहीं जानते। तो उन्होंने जो बम बनाए हुए हैं वो लास्ट में सारे ही बम और बड़ा बम भी फोड़ देते हैं कि रखे रहते हैं, फोड़ देते हैं। तो बताया युवाओं के द्वारा बड़ा बम फूटने वाला है। लोग समझते थे ब्राह्मणों की दुनिया में कि रुद्रमाला के बतौर ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया में 98 में 15 अगस्त जन्माष्टमी के दिन एडवांस ब्राह्मण का संगठन का आधा विनाश हुआ था। क्या? जब आधा विनाश हुआ था तो 40-50 भाग गए। वो तो आधा विनाश हुआ, अभी क्या होने वाला है? है अभी पूरा विनाश होने वाला है, क्योंकि शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची और 3 बार खलास कर दी। तो ये 3री बार है, इस 3री बार में भी क्या होगा? विनाश तो होगा, फिर नई दुनिया का ब्राह्मणों का संगठन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। और वो आखिरी ब्राह्मणों के संगठन की स्थापना होगी। तो असली ब्रह्म मुहूर्त कहां से शुरू हुआ, कब से शुरू होता है? अरे अरे बोला ना, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40-50 वर्ष लगते हैं। वो 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? है 2017-18 में पूरे होते हैं। तो 2017-18 में जो रुद्रमाला का संगठन पहले बनता है, रुद्रमाला पहले बनती है या विजयमाला पहले बनती है? है रुद्रमाला पहले बनती है, राजाओं की माला। वो राजाएं राजयोग सीखने वाली आत्माएं बाप को प्रत्यक्ष करती हैं। कैसे प्रत्यक्ष करती हैं? क्या तरीका बताया? अरे परमात्मा बम कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। ये वरदान मिला या नहीं मिला? है मिला। तो जो वरदान मिला है कि कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, दुनिया का विनाश करना चाहें तो विनाश भी कर सकते हैं, और नई दुनिया की स्थापना करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के मुख से जो वाक्य निकला भले गुलजार दादी के द्वारा निकला, कौन सी आत्मा का वाक्य है? ब्रह्म वाक्य है। तो सच्चा साबित तो होना है ना। तो जब बांब फूटता है तो उस बांब से बदबू भरी हवा चारों तरफ तेजी से फैलती है या नहीं फैलती है? ऐसी बदबू भरी तीक्ष्ण हवा फैलती है कि सूंघने मात्र से लोग खलास हो जाते। वो है स्थूल बम और उसकी स्थूल बदबू, और यहाँ है बेहद का बम और उसकी बेहद की ग्लानी की बदबू। क्या? जिस ग्लानी के बारे में शास्त्रों में खास लिखा हुआ है, क्या? सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। गौ हत्या सबसे बड़ी हत्या मानी जाती है। भक्तों ने तो समझ लिया कि जानवर गऊ की बात होगी, जानवर गऊओं की बात नहीं है, ये तो ह्यूमन गऊओं की बात है। जानवर गऊओं को भी मुसलमान जास्ती काटते हैं, विदेशी लोग ज्यादा गायों का मांस खाते हैं। यहां भी ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरे दूसरे धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं। इस्लाम और मुस्लिम धर्म की आत्माएं भी हैं। और वो क्या खाने वाली है? गऊ मांस खाने वाली। गऊ हत्या करेंगी तभी तो मांस खाएंगी। तो ज्ञान सूर्य के सन्मुख बैठकर वर्षा लेने वाले बच्चों का क्या काम है? क्या करें है? अगर बाप टीचर सदगुरु को पहचाना है, जाना है, माना है, तो जिसको जान लिया उसकी निंदा कान से भी नहीं सुननी है। क्या निंदा सिर्फ गाली देना ही नहीं होती है? गंदी गंदी बातें सुना करके लोगों को डाउन करने की बात ही निंदा नहीं होती है। निंदा जो सदगुरु है, जिसके लिए बोला जाता है, एक सदगुरु निराकार से सदगति और अनेक गुरुओं से दुर्गति। माना एक सदगुरु निराकार, निराकारी स्टेज धारण करने वाला साकार सदगुरु जो दलाल कहा जाता है, उसने जो सुनाया उस सुनाए हुए के विपरीत अगर कोई सुनाता है, उल्टी बातें सुनाता है, तो निंदा करने वाला है या नहीं है? निंदक है या नहीं है? तो ऐसे निंदा करने वालों की निंदा को कान से भी नहीं सुनना है। क्या करना है? है? मुसलमानों की तरह कान बंद कर लें है? और ऊपर को चलाएं, हाय शिव बाबा बचाओ, अल्लाह अकबर, ऐसे करें? क्या करें? एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल लें। इतना ही नहीं, उनकी निंदा की बातों का कोई जवाब भी न दे, क्योंकि वाद विवाद करने से झगड़ा बढ़ेगा या शांत होगा? झगड़ा बढ़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए है? किनारा कर लेना चाहिए। और ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला है, एक से ज्ञान सुनना है, एक की बातों को मानना है, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और यहां रिहर्सल के टाइम पर, ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग के टाइम पर जो व्यभिचारी ज्ञान सुनने के आदि हो जाते हैं, वो ब्रॉड ड्रामा में भी द्वैतवादी द्वापर युग आने पर क्या करेंगे है? क्या करेंगे? हाँ, दूसरे दूसरे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की बातें सुन लेने लग पड़ेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन गीता में तो बोला है भगवान ने, क्या है, स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। अपना धर्म क्या है, आत्मा का, स्व माने आत्मा, स्वधर्म माने आत्मा का धर्म, उस आत्मा के धर्म में युद्ध करते करते भले प्राण छूट जाएं, जैसे यज्ञ के आदि में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई, सारा ब्राह्मण परिवार भी दूसरी तरफ हो गया, फिर उस एक आत्मा का क्या अंजाम मुरली में बताया, लाश भी गुम कर दी। महाराष्ट्र में आज भी ये गायन चल रहा है, क्या, देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि, धर्म की रक्षा के लिए बाबा ने भी बताया, धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। तो ये आत्मा का धर्म है, आत्मा जब अपने स्वरूप को पहचान जाए तो उस आत्मा के पार्ट का जो धारणा रूपी धर्म है उसे निभाना चाहिए या नहीं निभाना चाहिए, है? निभाना चाहिए, भले सारी दुनिया विरोध करती रहे, मित्र संबंधी विरोध करें, परिवार के लोग विरोध करें, परिवार का मुख्य भांति पत्नी भी विरोधी हो जाए, जैसे यज्ञ के आदि में ओम मंडली में जब धोबी घाट की बात को लेकर के सिंध हैदराबाद में बड़ा भारी बवंडर खड़ा हो गया अखबारों आदि में भी, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, भाग गए, किसी को पता ही नहीं चला कहां चले गए। मुख्य सहयोगी ही परिवार का जब ऐसा धोखा दे जाए तो धक्का लगेगा या नहीं लगेगा, और ये तो परंपरा है दुनिया की, भारतवासियों की भी, कि जो बच्चा बुद्धि छोटे बच्चे होते हैं बाद वाले धर्मों में विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं होती हैं, षठ रूपी रंगमंच पर वो आत्माएं बच्चा बुद्धि होने के कारण मां को विशेष तरजीह देती हैं या बाप को विशेष तरजीह देती हैं, उन्हें लगता है कि मां से जो प्यार मिलता है वो प्यार किसी से नहीं मिल सकता, बाप भी हमें उतना प्यार नहीं करता, लेकिन ब्रह्म वाक्य में बाप क्या कहते हैं, बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है, मां के लिए नहीं कहा, क्योंकि मां के रूप में जो प्रैक्टिकल पार्ट दादा लेखराज ब्रह्मा का है वो क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स से मिलता जुलता है या नहीं है? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, इसलिए क्रिश्चियंस का दिखावे का प्यार है या असली प्यार होता है? दिखावे का प्यार होता है। उन्होंने ये दिखावा कहाँ से सीखा? शूटिंग पीरियड में जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली भारतीय आत्माएं हैं, उन्होंने ये दिखावे का प्यार कहाँ से सीखा है? माँ से सीखा, वेद की माता से सीखा। जिसको समझते हैं कि वो सारी दुनिया के बीच एक ही आत्मा है जो सहनशीलता का बड़े से बड़ा पार्ट बजाती है। सहनशीलता ही सब गुणों का राजा है, लेकिन जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है उसमें सब गुणों और अवगुणों का बीज होगा या नहीं होगा? गुणों का भी बीज है, बाप है, और अवगुणों का भी बाप है। इसलिए बार बार मुरली में ये वाक्य आता है, क्या बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। माने आत्मा रूपी जो 500-700 करोड़ बच्चे हैं मनुष्य सृष्टि में, वो अच्छी तरह समझ लें कि तुम्हारे में वो ताकत नहीं है। क्या ताकत? जो अपवित्रता के बल पर इस दुखी दुनिया का विनाश कर सको, क्या ये ताकत किसमें है? तुम्हारे बाप में वो ताकत है। जो काम दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं कर सका, वो काम बापों का बाप आकर के करता है। इसलिए बोला कि अमृत बेले को पहचानो, आखिरी संदेश में भी बोला समय के नाजुक पने को जानो, बड़ा नाजुक समय है। अभी गफलत का समय नहीं है, प्रमाद का समय नहीं है, अलबेलेपन में रहने का समय नहीं है, अलबेलेपन में पुरुषार्थ करने का समय नहीं है। तो कौन सा समय है अमृत बेले का? निश्चित हुआ या नहीं हुआ है? अभी भी निश्चित नहीं हुआ। जैसे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनको महत्व का पता ही नहीं होता है कि अमृत वेले का क्या महत्व होता है, तो कितने बजे तक सोते रहते हैं? है 8-9-10 बजे तक भी सोते रहते हैं। ये पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते हैं या पूर्वी सभ्यता को फॉलो करते हैं? है पूर्वी सभ्यता का हीरो कौन दिखाया गया? अरे अष्टदेवों का चित्र देखा है? है, चार दिशाएं और चार दिशाओं के चार कोण हैं, कोने उनमें उत्तर पूर्व का कोना है ना, है ईशान कोण, जिसका नाम ईश्वर के ऊपर पड़ता है। ईशान कोण ईश्वर का उदित होने का कोण, जहां से ईश्वर उदय होता है, ज्ञान सूर्य उदय होता है। उस देश का नाम क्या है, हमारे भारत के नजदीक ही है, भूटान। ब्रू माने भौं, तान माने तान ली, क्या ब्रह्म वाक्य है इशारे के लिए, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। क्या ये शिव के महावाक्य हैं? है शिव विनाश करने वाला है या कल्याणकारी है? विनाश में आत्माओं को दुख होगा या सुख होगा? है दुख होगा। तो बताया, सुख का वर्षा देने वाला भी एक ही बाप टीचर सदगुरु है। और उस एक बाप को अमृत बेले पुरुषार्थ करके नजदीक जाने का प्रयास करना है। क्या मतलब? इस सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है तो कोई आत्माएं होंगी ना जो जन्म जन्मांतर शिव बाबा के नजदीक रह करके पार्ट बजाएंगी। या आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु निराकार के पास रहकर पार्ट बजाना है, वहां तो पार्ट होता ही नहीं, न सुख का पार्ट न दुख का पार्ट। ये साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की बात है, और वो पुरुषार्थ जो असली अमृत बेला है उस अमृत बेले को पहचान करके करना है। दुनिया में लोगों को जिनको पहचान ही नहीं है तो वो 8-9 बजे तक सो रहे। हमको पहचान है थोड़ी बहुत नंबर बार, लेकिन फिर कहते हैं ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। अलबेलेपन में है, अलबेलेपन की नींद में सो रहे हैं, प्रमाद में सो रहे हैं, गफलत में हैं, या अमृत वेला सफल हो रहा है? हैं? सफल हो रहा है। जिसका अमृत वेला सफल हो रहा हो, आत्मा संतुष्ट हो, वो हाथ उठाओ, घुमाओ। तो बताओ, अमृत वेले का टाइम का ही पता नहीं चला कि बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में अमृत वेले का मुख्य टाइम क्या है, कब से लेकर कब तक? अरे फिर भूल गए। हाँ 40-50 वर्ष वो तो हो गया, 40-50 वर्ष, लेकिन टाइम निकालो ना। हैं? 2017-18 के पहले अरे सन 76 प्रत्यक्षता वर्ष था बाप का, 77 को संपूर्णता वर्ष कहा, तो 77 के बाद ही गिनेंगे ना, तो 40 वर्ष गिनेंगे, 2018 आता है। छत्तर में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में है? क्या क्या रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है? भूल गए? अरे सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष, तो 40 वर्ष कम से कम समय में कोई आत्माएं निकलेंगी या नहीं निकलेंगी दूसरी बार की प्रत्यक्षता में? पहली बार प्रत्यक्षता हुई तो टू लेट का बोर्ड लगा 76 में। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, जिन्हें बनना था वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अब कोई कितना भी पुरुषार्थ करे डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी इसी जीवन में अव्वल नंबर का नारायण नहीं बन सकता। भले नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड एट्थ तक होंगे सतयुग में, फिर तो कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा, एक निकलेगा या ज्यादा निकलेंगे हैं? 8 निकलेंगे, नंबर वार एक के बाद एक निकलेंगे या 8ों इकट्ठे निकलेंगे? नंबर वार निकलेंगे। तो कब से शुरू होता है अमृत वेला है? 2018 से। और अमृत वेला जब आरंभ होगा तो राजाएं, वो मुख्य मुख्य राजाएं हैं षष्ठ रूपी रंगमंच के, वो अपना संगठन तैयार करेंगे या नहीं करेंगे? कितनों का संगठन पक्का हो जाए राजाओं का, माला रूपी संगठन, जो राजधानी पक्की कही जाए, राजाओं का संगठन पक्का कहा जाए। राजधानी तो तब होती है जब राजाओं की धारणा शक्ति विजयमाला संपन्न होकर इकट्ठी हो जाए, मिक्स हो जाए, रुद्रमाला विजयमाला दोनों का स्वभाव संस्कार का मेल हो जाए। तो कब से कब तक अमृत वेला? 18 से लेकर 28 तक पूरी राजधानी स्थापन होने का अमृत वेला। इस टाइम जो पुरुषार्थ कर लेंगे वो राजयोग से राजा बन सकते हैं, और बाद में भी पुरुषार्थ करने वाले नंबर वार निकलते हैं। जो राज परिवार के भांति बनते हैं कितने? 16,108। ओम शांति।